તારીખ 16/5/1996 શ્રી સમયસર ગાથા 262-265 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 247.
इस प्रकार से वास्तव में हिंसा का अध्यवसाय ही हिंसा है, हिंसा का अध्यवसाय ही हिंसा है, ऐसा फलित हुआ मैंने ऐसा साबित हुआ, सिद्ध हुआ, ऐसा गाथा में कहेंगे। अध्यवसी देण बंधो सत्ते मारे वो मारे वो, ऐसो बंध समास हो जीवाण मुनिच्छय नयत। मत मारो, कर्मबंध अध्यवसान से ही होता है, हिंसा का अध्यवसान से कर्मबंध होता है तो अपने स्वरूप की हिंसा होती है। और मत मारो मैंने अहिंसा का अध्यवसाय हो, जीव को मारेंगे नहीं, वो की रक्षा करेंगे, फिर भी अध्यवसान से बंद होगा और अपना स्वरूप की हिंसा होगी, नहीं मारने से भी। ये अधिकार का सारांश है, टोटल लगाया है, संक्षेप में वो बात किया कि बंद अध्यवसान से होता है। अध्यवसान माने क्या? वस्तु का स्वरूप है ऐसा नहीं मानना और ऐसा नहीं जानना। जैसे कि हम किसी को मार सकते नहीं क्योंकि मरना उसके आयुष्य के अधीन है, ऐसे ही किसी को जिंदा रख सकते नहीं क्योंकि जिंदा रहना उसके आयुष्य के अधीन है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। कि वस्तु का स्वरूप है फिर भी ऐसा मानना कि मैंने मारा और मैंने रक्षा किया, वो दोनों अध्यवसान है। धर्म के क्षेत्र में मारने का उद्देश्य नहीं होता है, लेकिन धर्म के क्षेत्र में बचाने का, अहिंसा पालन करने का उद्देश्य आया है। फिर भी उनकुंद आचार्य कहते हैं कि वहाँ बचा सकते हैं, वो अध्यवसान है, वो बंध का कारण है और वो अपने स्वरूप की हिंसा है। वो भय प्रकृति से होता है, वो मुझे मारेगा, उत्पन्न बचो बच जाओ, वो तो भय प्रकृति का, भय संज्ञा के कारण से ऐसा। तो भय संज्ञा अनादि से है, वो तो ऊपर जाती है, छठे गुण स्थान के बाद जाती है, बंदे का कारण है। तो उसमें दो प्रकार है कि जो ज्ञानी होते हैं उनको अध्यवसान पूर्वक भय का भाव नहीं आता, और अज्ञानी है उसको अध्यवसान पूर्वक आता है। ज्ञानी ऐसा जानता है कि मुझे कोई मार सकता नहीं, मेरा आयुष खत्म होगा, कोई मार सकता नहीं, कोई मारेगा ऐसा बोलेगा, मार सकता नहीं है, और मुझे कोई बचा सकता भी, ऐसा जानते हैं। उसमें उसका श्रद्धा ज्ञान बराबर काम करता है, श्रद्धा ज्ञान तो बराबर उसमें इस तरह से काम करता है, फिर भी चारित्र मोह में पुरुषार्थ मंद होने के कारण से अल्प भय होता है। तो लगता है कि दूसरों को भी, अज्ञानी को भी भय होता है और ज्ञानी को भी हुआ, लेकिन दोनों में अंतर है, एक सी बात नहीं है। यह निश्चय नहीं से जीवों के बंध का संक्षेप है। संसार में जीवों को बंध होता है, कर्म का बंध होता है, उसका टोटल संक्षेप मैंने टोटल वो है कि जो अध्यवसान करता है वो बनता है। पर पदार्थ का कार्य मैं करता हूँ वही बनता है, वही अध्यवसान है, कर्ता बुद्धि वो अध्यवसान है, एकत्व बुद्धि भी अध्यवसान है, सुख बुद्धि भी अध्यवसान है, भोक्ता बुद्धि भी अध्यवसान है, आधार बुद्धि भी अध्यवसान है, क्योंकि ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। टीका, पर जीवों को अपना कर्म का उदय की विचित्रता के कारण से प्राणों का व्यपरोप माने वियोग कदाचित हो कदाचित नहीं हो। क्या कहते हैं कि कोई भी जीव को, पर जीव मैंने कोई भी अन्य जीव को मेरे को छोड़ करके, उदय की विचित्रता के कारण से उनके कर्म, आयुष कर्म की विचित्रता है। विचित्रता क्यों, क्या कि उसमें अनेक भेद प्रभेद है, उसमें अनेक भेद प्रभेद है। कोई तंदुरुस्त मर जाता है, कोई बीमार होके भी मरता नहीं, कोई एक्सीडेंट मामूली होते ही शौक से मर जाता है, और किसी को बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने पर भी मरता है। जैसे हीरालाल जी को एक्सीडेंट हुआ था, मेजर एक्सीडेंट था, सब खून निकल गया, नसें सब कट गई थी, बड़ी नस कट जाती है तो 3 मिनट में सब निकल जाता है। ऐसे ही कोई छुरी के घास से भी बड़ी नस कटे हाथ की या पैर की, जो हार्ट के साथ संबंध रखती है, 3 मिनट में सब खून निकल जा रहा है, आदमी मर जा रहा है, क्योंकि सब खून निकल गया था। शाम को 7 बजे एक्सीडेंट हुआ, रात को 12 बजे के बाद नया खून मिला है, 5 घंटा बिना खून चला है, इसका आयुष था। डॉक्टर लोग ऐसा कहते थे कि 1000 एक्सीडेंट ऐसा आता है इसमें एक भी बचता नहीं है, 100 में 1 नहीं बचता ऐसा नहीं बोला, 1000 में भी 0.01 भी कोई बचता नहीं है, मर जाता है ऐसा परिस्थिति में, ये बात करता है, आश्चर्य की बात है। तो फिर लोगों को लगे कि कांजी स्वामी का चमत्कार है, क्या बोलने लगे वहाँ राजस्थान में, तो गांधी स्वामी का चमत्कार, चमत्कार के आयुष्य था। तो क्या है कि अपन कुछ कार्य करें उसमें दूसरे जीवों का आयुष्य पूरा होने से उसका प्राण का वियोग हो जाए और नहीं भी हो जाए, विकल्प मारने का होए और बचाने का होए, कुछ भी होए, जो बंद होता है वो अध्यवसान से होता है। वो अध्यवसान कैसा होता है कि मैं घात करता हूँ, मैं दूसरे जीव का घात करता हूँ, ऐसा जो अहंकार रस से भरा हुआ हिंसा का अध्यवसाय, हिंसा में अध्यवसाय, हिंसा का अध्यवसाय, वही निश्चय से उसको मैंने हिंसा के अध्यवसाय करने वाले जीव को बंद का कारण है। हिंसा हुई वो बंद का कारण नहीं, और हिंसा नहीं हुई इसलिए बंद का कारण नहीं है ऐसा भी नहीं, अध्यवसान किया वो बंद का कारण है। शास्त्र में बड़ा दृष्टांत आता है तांदुल या मच्छ का। तांदुल जितना जिसका शरीर है वो अध्यवसान उतना करता है हिंसा का कि मर करके सातवें नारकेली को जाता है। हिंसा बिल्कुल नहीं करता क्योंकि हिंसा कर सके उतना शरीर ही उसके पास नहीं है, तांदुल जितना तो शरीर है, और हिंसा का अध्यवसान उतना करता है कि सातवीं नारकी में जाता है। प्रश्न आया है, कसाई खानों में जो जीव मारे जाते हैं उसको बचाना या कसाई खाने बंद कराने में योग देना है, मन वचन काया से तन मन धन से, तो क्या दोष है या नहीं? फिर से, कसाई खाने में जो जीव मारे जाते हैं उसको बचाना है, बचाने का भाव कर सकते हैं, बचा सकते नहीं है। अगर हम बचा सकते तो विश्व में एक भी कसाई खाना हम चलने देवें नहीं, बंद कर दें, लेकिन वो हमारे अधिकार की बात नहीं है। लेकिन हमारी भावना ऐसी हो सकती है कि इस विश्व में कोई कत्ल खाना नहीं हो और एक भी जीव कत्ल खाने में नहीं ले जाने चाहिए, ये भावना हो सकती है, भाव हो सकता है, लेकिन हम माने के हम बचा सकते हैं तो वो अध्यवसान हो गया, वो बंद का कारण है, भले ही पुण्य बंद का कारण है लेकिन बंद का कारण है। कसाई खाने बंद कराने में योगदान देना है, ठीक है, भाव आएगा, मन वचन काया से तन मन धन से योगदान देने का परिणाम आएगा, लेकिन कर सकता हूं ये मेरा तन मन धन है, ये मेरे मन वचन काया है, उन साधनों से मैं बचा सकता हूं, ये मिथ्यात्व सहित पुण्य बंध का कारण है। पुण्य बंध का नहीं, मिथ्यात्व सहित पुण्य बंध का कारण है, ऐसा लेना है। यहाँ क्या कहते हैं कि मैं मारता हूँ, मार सकता हूँ, मारता हूँ मैंने, मार सकता हूँ, ऐसा जो अहंकार रस से भरा हुआ हिंसा का अध्यवसाय, वो हिंसा का अध्यवसाय है और उसमें अहंकार रस है। देखो रस शब्द लेते हैं आचार्य महाराज, रस शब्द का प्रयोग करते हैं, अहंकार रस चढ़ेगा ऐसे ही अहिंसा पालन का अध्यवसान में अहिंसा का अध्यवसान का अहंकार रस चढ़ेगा। वो अहंकार रस चढ़ेगा नहीं, वो रस बंध का कारण है। यही निश्चय से बंध का कारण है। वास्तव में बंध का कारण वो अहंकार रस चढ़ा वो है। इसलिए अहिंसा पालन करने वाले को, दान देने वाले को, त्याग करने वाले को, व्रत करने वाले को, संयम करने वाले को, शास्त्र पढ़ने वाले को, पूजा भक्ति करने वाले को यही देखना है कि हमको अहंकार रस चढ़ता है क्या नहीं चढ़ता है। मैंने ये कार्य किया, ये क्रिया मैंने की, ऐसा यदि अहंकार रस चढ़ता है तो वो कार्य तो पुण्य का करता है, साथ साथ विख्यात का बंध भी उसको होता है। तो पुण्य तो अल्प हुआ, पुण्य कितना हुआ? अल्प हुआ। और मिथ्यात्व का पाप कितना हुआ? कि 18 पाप स्थान है, उसमें सबसे बड़ा पाप हुआ। अब करना कि नहीं करना, कि ऐसा मिथ्यात्व सहित अहंकार करने लायक नहीं है। अपनापन नहीं करना, कर्ता बुद्धि नहीं करना, मैं कर सकता हूं ऐसा कर्ता पने में एकत्व बुद्धि होती है, वो नहीं करना। विकल्प आया, बचाने का विकल्प आया, पूजा भक्ति करने का विकल्प आया, व्रत संयम का विकल्प आया, शास्त्र पढ़ने का विकल्प आया, उसका कोई मूल्य नहीं है। इसलिए वो अहंकार करने लायक नहीं है, वो अहंकार करने लायक तो नहीं है। अहंकार करना मैंने अहम भाव करना, अहम भाव करने से रस आता है, अपनापन करने से रस आता है। यही जीव को बंध का कारण है, क्योंकि निश्चय से पर का भाव ऐसा जो प्राणों का व्यपरोप माने वियोग उच्छेद, यह पर से कराना अशक्य है। दूसरे का प्राण दूसरा ले सकता है या रोक सकता है, प्राण जाता है वो हो सकता नहीं है। वस्तु के स्वरूप की मर्यादा के बाहर की चीज है वो, बन नहीं सकता। फिर भी जीव करता है ऐसे परिणाम तो उसको बंध होता है, तो स्वयं बंधता है भावार्थ। निश्चय नहीं से दूसरे के प्राणों का वियोग दूसरे से कर सकता नहीं है। दूसरे का प्राण का वियोग कोई दूसरा कर सके ऐसा बन सकता नहीं है, किसी की पहुंच नहीं है। उसके अपने कर्म के उदय की विचित्रता के वश कदाचित होता है और कदाचित नहीं होता है। होता है तो अपने कर, तो अपने कर्म के उदय उसमें विचित्रता मैंने अनेक प्रकार है, विचित्रता मैंने अनेक प्रकार है। कोई 7 मजले से गिरता है मरता नहीं है, और कोई 5-6 सीढ़ी से मैंने आधा मजले से गिरता है मर जाता है। विचित्रता है, जिसका आयुष पूरा हुआ वो मरेगा, बहुत तंदुरुस्त हो, अपने वो भगवान दास शोभालाल जी आते थे ना दोनों भाई, फिर भगवान दास और शोभालाल जी, तो भगवान दास जी का शरीर ऐसा था दुबले, और शोभालाल जी लठ थे, तगड़े थे। शोभालाल जी पहले आयुष पूरा कर गया, उनका आयुष पहला पूरा हो गया, उसका देहावसान पहले हो गया, और भगवान दास जी बाद में गए, और उम्र में वो बड़े थे। पर होता है कि नहीं, बाप जिंदा रहता है, बाप का बाप जिंदा रहता है और बेटा का बेटा चला जाता है, ये विचित्रता है, कर्मोदय की ये विचित्रता है। तो कर्मोदय के अनुसार होता है तो होता है, कोई किसी का कर दे तो वस्तु के स्वरूप में नहीं है। हाँ, नहीं बचा सका, कितना बड़ी सुरक्षा थी राजीव गांधी, क्या कैनेडी को तो इसके से बड़ी सुरक्षा थी, जॉन कैनेडी को मारा कैसे, राजमार्ग पर मार दिया, घर बाजार में और दिन में मार दिया उसको, तो रात को, रात था और खास कोई जगह थी वो, तो बिल्कुल बाजार के बीच में, और यहाँ की म्यूनसिपालिटी की, न्यूयॉर्क की म्यूनसिपालिटी का जो बजट है वो हिंदुस्तान का बजट से बड़ा है, उन्हें पैसा उतना है कि अपनी सुरक्षा जो है उससे भी अधिक सुरक्षा वहाँ होती है, साधन भी अधिक होता है, सुरक्षा का व्यवस्था भी अधिक होती है, फिर भी मार दिया। मार सकता है इसलिए नहीं मारा है, इसका आयुष पूरा हुआ था, बस खत्म। उसमें कोई इंद्र, नरेंद्र, जिनेंद्र कोई बचा सकते नहीं है, ये वस्तु व्यवस्था है। निश्चय नहीं से प्राणों का वियोग, दूसरा से दूसरे का, दूसरे का दूसरे से दूसरे का हो सकता नहीं है। उनके अपने कर्म के उदय की विचित्रतावश कदाचित होता है और उदय की विचित्रतावश कदाचित नहीं भी होता है। इसलिए जो ऐसा मानता है, मानता है मैंने अहंकार करता है कि मैं दूसरे जीव को मारता हूँ या बचाता हूँ, उसका यह अहंकार रूप अध्यवसाय अज्ञानमय है। वो अहंकार रूप अध्यवसाय है, वही अज्ञानमय भाव है, और वही अध्यवसाय ही हिंसा है। तो परजीव को मारा वो हिंसा नहीं है, और मारने का परिणाम हुआ फिर भी नहीं मरा, आयुष था इसलिए, तो वो नहीं मरा इसलिए हिंसा नहीं हुई ऐसा नहीं है, मारने का भाव हुआ, अगले का आयुष्य था, मारा भी फिर भी मरा नहीं, मारा फिर भी मरा नहीं, एक आयुष था, बंद हो गया कि नहीं हो गया, कि अध्यवसान हुआ तो बंद हो गया, नहीं मरा तो भी बंद हो गया। और मारने का भाव हुआ, लेकिन मारने को गया तो वो कहीं अपने काम से उसी वक्त कहीं और जगह चला गया था, मारने की क्रिया हुई नहीं, बंद हुआ कि नहीं हुआ, कि बंद हो गया, खून करने का बंद हो गया। इसलिए बंद अध्यवसान से है, मारने नहीं मारने से नहीं है, या अगला मरे नहीं मरे इससे कोई बंद नहीं है। सीधा है अभिप्राय समेत परिणाम कषाय का हुए, उसमें अहंकार रस आए बिना रहेगा नहीं। तो अपना अभिप्राय का प्रकरण चला है, के अभिप्राय सहित कषाय का परिणाम होगा, उसमें रस चढ़े बिना रहेगा नहीं, आएगा आएगा और आएगा। ये द्रविलिंगी मुनि को यही तो होता है, मैंने सर्वसंग परित्याग किया, मैंने राज पाट कुटुंब परिवार रानियां सबका त्याग कर दिया, मैंने मेरा सब छोड़ दिया। किस क्या छोड़ा? मेरा छोड़ दिया। तुमने कुछ छोड़ा नहीं है, मेरापन रखा है तो कुछ छोड़ा नहीं है, और सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती हुए अपना कुछ नहीं। छह खंड का राज सब जी हजूर करे, मेरा कुछ नहीं, मेरे कोई लेना देना कुछ नहीं। ये पुण्य का खेल है। क्या है? पुण्य का खेल है, माया है, माया चले जाएगी। चार दिन की भी चांदनी नहीं है, मैं मेरा आत्मा ही मेरा स्वरूप है और मैं मेरी साधना करूँ, यही मेरा कर्तव्य है, बाकी कुछ मुझे लेना देना नहीं है। स्वरूप को साधता है, छखंड साधता, अखंड स्वरूप को साधता है, ऐसी बात। तो त्याग नहीं करे तो लिया नहीं, तो पादुदेव ने तो लिया। व्रत नहीं पचकाण नहीं नहीं त्याग वस्तु कोई नो, व्रत नहीं पचकाण नहीं नहीं त्याग वस्तु कोई नो, महापद्म तीर्थंकर थे श्रेणी कठाणांग जो लियो। थाणांग सूत्र देख लो, श्रेणी के राजा का चरित्र चला है थाणांग सूत्र में, वो महापद्म नाम के पहले तीर्थंकर आने वाले चौबीस में व्रत क्षेत्र में होंगे। अभी कोई व्रत नहीं, कोई पचकाण नहीं, कोई त्याग नहीं। तीन लोक का नाथ शासन अधिनायक तीर्थंकर आदिनाथ परमात्मा बनेंगे आने वाले चौबीस में, वही आदिनाथ होंगे। मध्यवसान नहीं, अंदर में भिन्न पड़ गए, बस खत्म। संसार के किसी भी पदार्थ से कोई संबंध नहीं है। उसमें अहंकार रस नहीं है, उसमें अहंकार रस नहीं है। कितनी समझदारी थी। देखो हम लड़ेंगे तो बहुत मर जाएंगे, अपन तो चाहते नहीं कि कोई मरे। तो बात तो रही अपनी ताकत की, चलो ताकत का प्रयोग करें। ताकत का प्रयोग कर लिया, तो बाहर की ताकत थी, आत्मा की ताकत तो अलग थी, दोनों जानते थे, क्योंकि वो दोनों भाई उसी भाव में मोक्ष में गए। ऐसी कौन सी बात थी, ऐसी कौन सी बात थी कि ऐसी लड़ाई होने पर भी वो बंधे नहीं और मोक्ष में गए, ऐसी कौन सी बात थी। विचिक्षण पुरुष को ये बात देखने का ही जिज्ञासा होनी चाहिए। विचिक्षणता है तो वो जिज्ञासा होनी चाहिए, ऐसा कैसे बना, इतना भाव आया कि अगला मर जाए, ताकत लगा लग जाए तो मर जाए नहीं। अंदर में अहंकार रस नहीं, कषाय की कमर टूट गई थी तो मोक्ष में चले गए। जिस राज के लिए लड़ाई थी उस राज छोड़ने में भरत चक्रवर्ती को कितनी देर लगे, बाहुबली को तो लड़ाई में ही वैराग्य हो गया, लड़ते लड़ते ही वैराग्य हो गया उसको, फिर भी मोक्ष जाने में नहीं, मोक्ष जाने में उनको मुनिपना में बहुत टाइम लगा है, 1000 साल लगा है बाहुबली जी को, वैराग्य पहला उनको आया, बाहुबली जी को आया, दीक्षित हो गए, जंगल में चले गए, 1000 साल तपस्या किया, फिर मोक्ष में गए। भरत चक्रवर्ती को वैराग्य उस वक्त नहीं आया, जब वैराग आया तो एक अंगूठी गिर गई, तो चक्रवर्ती है दसों में बहुत सी अंगूठियां पहनते हैं, एक अंगूठी गिर गई, वैराग हो गया, वैराग हो गया, उसी वक्त दीक्षित हो गए, अंतर्मुख में केवल ज्ञान दे दिया, खत्म, आए ही नहीं। क्या बात है, अंदर में जिज्ञासा का विषय वो होना चाहिए कि ऐसी कौन सी बात है, तो वो इस तरह से मोक्ष में चले जाते हैं, बनते नहीं है। अंदर में जो पुरुषार्थ है, मोक्ष पुरुषार्थ आधीन होता है, जिस जीव का जितना अंतर्मुखी पुरुषार्थ, पुरुषार्थ की नहीं था, वो अपने परिवार को बोल देते थे कि देखिए हमारा थोड़ा राग है तो आपके बीच में है, क्या आप लोगों के बीच में कहाँ है, कहाँ तक है, थोड़ा विकल्प उठता है, ये विकल्प तोड़ने का पुरुषार्थ भी चलता है, समझ लेना, क्या हमारा ये विकल्प तोड़ने का पुरुषार्थ चलता है, अगर टूट गया हम छुमंतर हो जाएंगे, जाओ, इतनी बार है बोल दिया, पहले से एडवांस नोटिस तो दे ही देते हैं, दे रखते हैं कि हम कभी भी चले जाएंगे, हमारा कोई भरोसा तुम लोगों को करना नहीं है, करोगे तो पछताओगे, हम कभी भी निकल जाएंगे यहां से, क्योंकि हमारा यहां रहने का कोई काम है ही नहीं, हम यहां रह सकते नहीं है। सबका ऐसा ही होता है, ज्ञानी तो सब एक से ही होते हैं, क्या कहते हैं कि यो अध्यवसाय ही हिंसा है, और वो हिंसा किसकी है, परजीव की नहीं है, अपना विशुद्ध चैतन्य प्राण का घात है। देखो जयचंद जी क्या लगते हैं लिखते हैं, इतना आचार्य श्री ने नहीं लिखा है, उतना जयचंद जी लिखते हैं भावार्थ में, कि यो अध्यवसाय ही हिंसा है, और ये किसकी हिंसा है, कि अपना विशुद्ध चैतन्य प्राण है उसकी हिंसा है, और यही बंध का कारण है, यही निश्चय नहीं का मत माने अभिप्राय है, मत माने अभिप्राय है, तो निश्चय नहीं का ये अभिप्राय है, ये भगवान जिनेन्द्र परमात्मा का अभिप्राय है, ये जिन मत है, निश्चय का जो मत है वो जिन मत है, ऐसा वस्तु का स्वरूप है, यही विशुद्ध चैतन्य प्राण, अपना चैतन्य प्राण का घात है, दूसरे को कोई मारता है तो आर्य मनुष्य देख नहीं सकता, मानते हैं ना प्राणियों को मार देते हैं। हमें अपने यहाँ गुजरात में उतना नहीं है, बंगाल में और जगह जाओ तो बाजार के बीच में गर्दन से ऐसा करके मार देते हैं कुकड़े को, कबूतर को, मैं देख नहीं सके अपन। लेकिन अपना चैतन्य प्राण का जब गला घोंटते हैं वो कैसे बर्दाश्त होता है, ये बर्दाश्त होना चाहिए। अंदर में मेरी शांति, मेरा सुख, मेरा आनंद आनंद, उसका खून करना, अपने को कोई खूनी कहे तो बर्दाश्त नहीं करे। लेकिन अध्यवसान में वही कर रहे हैं, चाहे मारने का अध्यवसान हो चाहे बचाने का हो।
खुद की दया नहीं आई,
खुद की दया नहीं आई। अनंत जन्म मरण कर चुका है ऐसा अपनी आत्मा का, जिसको करुणा आती है, अपनी आत्मा की करुणा जिसको आती है, वही इसको बचाने के लिए यथार्थ प्रसाद करेगा। जिसको अपनी करुणा नहीं है वो अपने अपने को बचाने का प्रसाद कर सकेगा? इसलिए परिभ्रमण की वेदना आती है, तो उसमें अपनी दया है। अपनी दया आए बिना अपने को बचाने का पुरुषार्थ होगा कहाँ से? हो ही नहीं सकता। यहाँ से चालू काम काम का कार्य का प्रारंभ यहाँ से होता है। प्रारंभ से वो बात लिया है, रागोद्गार महारस है, राग का महारस से बंध होता है, राग रस ही महारस है, वही बंध का कारण है। अहंकार रस लिया है, अहंकार शब्द नहीं लिया, अहंकार रस लिया है। रस का जो मुद्दा है कोई महत्वपूर्ण बात है, और अवलोकन में रस तोड़ता है, प्रयोग पद्धति है ना, अनुभव पद्धति है, इसलिए उसमें रस तोड़ता है। जो अवलोकन करते हैं उनको वो पता चल जाता है कि मेरा रस यहाँ टूटता है, तो बंद पर प्रहार होता है, वहाँ अवलोकन से ही बंद पर प्रहार होता है, शिथिल बंद होएगा, मंद रस से बंद होएगा वो बंद भी शिथिल होएगा, तीव्र रस से बंद होएगा वो बंद भी मजबूत होएगा। ये बात हाँ, अपनापन कर दिया, मैंने किया, मैंने बचाया, मैंने मारा, ये बात हो जाए। यहाँ व्यवहार में को गौण करके कहा है ऐसा जानना, इसलिए यह कथन कथनचित है ऐसा समझना। कथनचित इसलिए कि तुम तो मार सकते नहीं है, तो मारने का भाव हो गया तो क्या हो गया? मार सकते तो नहीं, इसलिए कोई स्वच्छंद में नहीं चढ़ जाए, इसलिए कि मार दिया, क्योंकि क्यों भाई क्यों मारा हमको, तो हम तो मार सकते नहीं, ऐसे नहीं लेना है, उस प्रकार नहीं लेना है। किसी की चीज ले लिया, बोला कि भाई हमारी चीज क्यों ले लिया, हम ले सकते ही नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात उल्टी लेने की नहीं है। भावार्थ में उन्होंने बहुत सावधानी रखी है, निश्चय नहीं का विपर्यास नहीं होवे, निश्चयाभास नहीं होवे, उसके लिए हर जगह उन्होंने अपेक्षा खोल दी है। सर्वथा एकांत पक्ष को मिथ्यात्व है, सर्वथा जो एकांत पक्ष है वो मिथ्यात्व है। अब हिंसा अहिंसा की जैसे सर्वकार में वो क्या है, फिर वही इसके भेद प्रभेद पुण्य पाप के ले लिए। संक्षिप्त तो 262 में आ गया है और 63-64 में तो वो तो पुण्य पाप का विषय ले लिया। फिर वेद प्रभेद तो कोई भी अध्यवसान हो, पुण्य का हो या पाप का हो, बंध का कारण होगा। दो बार गाथा छोड़ करके 265 गाथा लेंगे, उसका हेडिंग है पुनः बाह्य वस्तु। ये दूसरा भी बंध का कारण होगा ऐसी शंका मत करना, कोई बाह्य पदार्थ भी बंध का कारण होगा ऐसी शंका नहीं करना। अध्यवसान यही बंध का एक कारण होगा, एक कारण तो अध्यवसान होगा और दूसरा कारण बाह्य पदार्थ होगा, ऐसी शंका भी करने योग्य नहीं है। कितना स्पष्ट करते हैं विषय का, अध्यवसान ही एक बंध का कारण है, बाह्य वस्तु बंध का कारण नहीं है। अध्यवसान ही अकेला एक बंध का कारण है, दूसरी कोई बाह्य वस्तु बंध का कारण नहीं है, ऐसे अर्थ की गाथा कहते हैं। उस विषय में आचार्य महाराज की गाथा कहेंगे। वत्थुं पड्डुच जंपुण अजवसाणं तु हुदि जीवाणं नय वत्थुदोदु बंधो अजवसाणेन बंधोथि
आयत्यवसान जीवने
वही पुनः जीवों को जो अध्यवसान होता है वो वस्तु के अवलंबन करके होता है, तो भी वस्तु से बंद नहीं है, अध्यवसान से ही बंद है। किसी को मारने का भाव आया तो किसी को मारने का सामने कोई पदार्थ था, जीव था, प्राणी था, तो बंद किसके आश्रय से हुआ, अध्यवसान से हुआ या अगले का घात हुआ, इससे भी हुआ नहीं, दोनों मिल के बंद नहीं हुआ है, अकेला अध्यवसान से ही बंद होता है। ये वो तांदुलिया मच्छ का दृष्टांत बहुत बैठता है कि जो मगरमच्छ था उनको सातवें नारके का बंद नहीं हुआ, क्योंकि उनको उतना अध्यवसाय तीव्र नहीं था, जबकि जो नहीं मारता था उसको तीव्र अध्यवसान था। तो वो कुछ को मारता था, वो मगरमच्छ था बड़ा वाला, वो किसी को मार भी खा भी जाता था और कईयों को छोड़ भी देता था। वो उनके इधर बैठता है पापण पे, आंख पे देखता है कि बड़ा मूर्ख है, क्या दिखता है, क्या लगता है उसको, बड़ा मूर्ख है। मैं एक को भी नहीं छोड़ता, मैं अगर होता तो एक को भी सबको खा जाता। ये तो खुला मुंह करके रख करके पड़ा है, कहीं मुंह में आते हैं कहीं वहाँ चले जाते हैं, जिंदे मूर्ख है मूर्ख। बात तो वस्तु आश्रित बंद नहीं होता, वस्तु आश्रित बंद नहीं
होता।
तंदुल बच का ही काम किया है, परिणाम कर लिया। वस्तु तो ऐसे बनेंगे ना, जैसे बाह्य पदार्थ अनेक भोगो भोग के पंचेंद्रिय के विषय देखने में आते हैं, तो अच्छे हैं इसका मतलब क्या? ये पंचेंद्रिय के कुछ विषय बहुत अच्छे हैं इसका मतलब क्या? कि अगर मेरे पास होता, मुझे मिलता, तो मैं इसका भोग उपभोग करता, तो तंदुल मच का काम हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए ऐसे पदार्थों को देख करके परिणाम को संभालना चाहिए, वरना बंद हो ही जाएगा, पदार्थ नहीं मिलेगा। क्योंकि उतना पुण्य नहीं होता कि जितना दिखे उतना मिल जाए, उतना पुण्य किसी का नहीं होता, लेकिन बंद हो जाता है। टीका, अध्यवसान ही बंध का कारण है, बाह्य वस्तु बंध का कारण नहीं है। क्योंकि बंध का कारण जो अध्यवसान, उसके कारण पणे से ही बाह्य वस्तु का चरितार्थपणा है। बहुत विद्वत्तापूर्ण भाषा है, लेकिन विषय बहुत स्पष्ट रूप से वो प्रदर्शित कर सकते हैं कि बंध का कारण जो अध्यवसान, उसका कारण पड़े से ही बाह्य वस्तु का चरितार्थपणा है। मतलब क्या? कि बंध का कारण जो अध्यवसान, उसका कारण होने में बाह्य वस्तु का कार्य क्षेत्र पूरा होता है, वो कुछ बंध का कारण नहीं होती। बाह्य पदार्थ बंध का कारण नहीं होता, लेकिन कोई जीव इसका आश्रय करता है तो बंध का कारण का कारण गिन करके उसका उपयोग हुआ ऐसा कहने में आता है। जैसे पिस्तौल से मारा, छरी से मारा, साधन हुआ ना, और आदमी मर गया तो बंद हुआ, अध्यवसान हुआ तो बंद हुआ। अब वो जो साधन और साधन से मरा, उसका चरितार्थपना मैंने, वो बात कैसे हुई कि अध्यवसान हुआ तो? बिना अध्यवसान कोई मरता तो किसी को बंद का कारण लगता नहीं है। ये बॉम्ब बनाने वाले होते हैं, उसका अभिप्राय क्या रहता है? ज्यादा से ज्यादा लोग मर जाए, ये बॉम्ब से अधिक लोग मरने चाहिए। वो मरे नहीं मरे अलग बात है, जिसका आयुष पूरा होगा वो मरेगा, नहीं पाए आयुष पूरा होगा वो नहीं मरेगा। बॉम्ब बनाने वाला उसका अधिवसान हो गया, नहीं फूटा तो भी। तो जो कुछ हुआ, फूटा और कुछ मरे, तो क्या हुआ कि वो जो कार्य हुआ उसमें जो बंद हुआ उसमें उसकी गिनती की जाती है कि देखो इतना मर गया, इसके कारण से इतना मर गया। वास्तव में बंद कितने मरे इससे नहीं है, एक भी नहीं मरे तो भी बंद इतना ही होगा, ज्यादा कम मरे तो भी बंद उतना ही होगा। चरितार्थपना मैंने यूटिलिटी, बंध का उपयोग में उसका क्रिया होती है तो गिनने में आता है कि देखो इसने को मारा। वास्तव में जो अध्यवसान हुआ वही बंध का कारण है, वस्तु या वस्तु की क्रिया बंध का कारण है ही थी। उसको चालू ही बंद, अरे ये बंद बम फूट गया तो भी उसका अभिप्राय जहां तक चालू है वहां तक उसको आश्रय बंद चालू है, क्योंकि परिणाम से बंद है, अभिप्राय से बंद है, देवसांग से बंद है। वो तो बम बनाने वाले बम बनाने का सामान लावे वहां से चालू हो जाता है उसका अभिप्राय, उसका सामान आता है ना मटेरियल, तब से उनको तो परिणमन चालू हो गया, अध्यवसान चालू हो गया। तो जिसका हिसाब नहीं है उतना बनता है, वो उतना बनता है। अध्यवसान के कारण होने में क्या बम्ब है वो अध्यवसान बनने में होने में कारण बना, मारने का साधन वो कारण बना, जिसको मारा वो कारण बना, वो कारण बना उसमें ही उसका कार्य क्षेत्र पूरा हो गया। बंद होने में उसका कार्य क्षेत्र नहीं है, बंद होने में उसका कोई कार्य क्षेत्र नहीं है। उसकी चर्चा करते हैं कि यहाँ प्रश्न होता है कि यदि बाह्य वस्तु बंध का कारण नहीं है तो बाह्य वस्तु का प्रसंग नहीं करो त्याग करो, ऐसा बाह्य वस्तु का निषेध क्यों करने में आता है? बाह्य वस्तु बंध का कारण नहीं है तो बाह्य वस्तु का त्याग का उपदेश क्यों आया? चर्चा तो पूरी करेंगे ना, क्योंकि अब व्यवहार को साथ में ले लिया, पहले तो व्यवहार को गौण कर दिया था, अब व्यवहार के विषय को प्रश्न उठा करके उसकी चर्चा करते हैं। तो फिर उसकी बात उद्देश्य क्यों आता है? फिर जब उसका कोई कारण नहीं है तो उसका त्याग का उद्देश्य करने की जरूरत भी क्या है, वो प्रश्न उठाया है। हम बंध से कैसे बचे प्रश्न है, अबंध परिणाम करने से बचे, बचने का तो एक ही उपाय है अपने आत्मा में एकत्व करके अबंध परिणाम को करे तो बचे। उसका समाधान देते हैं कि अध्यवसान का प्रतिषेध के कारण बाह्य वस्तु का प्रतिषेध करने में आता है। देखो क्या उत्तर दिया है, गजब बात किया है, बाह्य वस्तु का निषेध किया, तुम्हें आप दारू मत पिए, बहुत हिंसा होती है दारू पीने में, मांस खाने में बहुत हिंसा होती है, ऐसा वस्तु का त्याग क्यों कराया? तो क्या अध्यवसान का त्याग कराने का था इसलिए कराया, वस्तु का त्याग का उतना महत्व नहीं दिया उत्तर में। अध्यवसान का त्याग कराने का हेतु माने प्रयोजन है, उसमें वस्तु का त्याग से कोई उतना वजन नहीं है। क्यों? कि वस्तु का त्याग नहीं करेगा, वस्तु का त्याग कर देगा या नहीं करेगा कुछ भी हो, अध्यवसान करेगा वो बंधेगा, अध्यवसान करेगा वो बंधेगा, क्योंकि वस्तु आश्रित होता है लेकिन वस्तु नहीं है तो भी होता है अध्यवसान। तो वस्तु का त्याग, अध्यवसान का त्याग करने, वस्तु का त्याग कराने का उपदेश के पीछे अध्यवसान का त्याग कराने का अभिप्राय है, उपदेशक का अभिप्राय को समझो, शब्द को नहीं पकड़ करके अभिप्राय को समझो, वही आशय है, आशय को पकड़ो। अध्यवसान को बाह्य वस्तु आश्रयभूत है, बाह्य वस्तु के आश्रय किए बिना अध्यवसान अपना स्वरूप को प्राप्त नहीं होता, अर्थात उत्पन्न नहीं होता। जो बाह्य वस्तु का आश्रय किए बिना भी अध्यवसान होता हो तो ऐसे आश्रयभूत ऐसे वीर जननी की पुत्री के सद्भाव में ऐसा अध्यवसान उपस्था है कि मैं वीर जननी की पुत्री को पुत्र को मारता हूँ। ऐसे आश्रयभूत ऐसे वंध्या पुत्र के असद्भाव में भी किसी को ऐसा अध्यवसान उत्पन्न होना चाहिए कि मैं वंध्या पुत्र को भी मारता हूँ, परंतु ऐसा अध्यवसान तो किसी को उत्पन्न होता नहीं। आचार्य महाराज है ना, अमृतचंद्र आचार्य, जो आर्ग्यूमेंट है अकाट्य दलील दिया है। तो यहाँ कहने का अभिप्राय वो है कि अगर कोई वस्तु ही नहीं होती तो अध्यवसान नहीं होता। जगत में ऐसी वस्तु है तो अध्यवसान होता है। आकाश के फूल तोड़ने का विकल्प किसी को नहीं आता, अध्यवसान नहीं आता, क्योंकि आकाश को फूल नहीं होता। परंतु वनस्पति के फूल होते हैं तो तोड़ने का अध्यवसान होता है, तोड़ सकता नहीं है लेकिन अध्यवसान तो होता है। ऐसे किसी को पुत्र होता है उनको मारने का अध्यवसान, इसके पुत्र को मारूंगा, लेकिन वंध्या पुत्र को मारने का, वंध्या को पुत्र ही नहीं होता, वंध्या पुत्र को मारने का अध्यवसान कहाँ से होगा। इसलिए आश्रयभूत वस्तु होती है, भले ही विकल्प में आश्रय होता है, बाहर में हो नहीं हो अलग बात है, उपस्थित हो नहीं हो, लेकिन सामने कोई वस्तु होती है तो उसके आश्रय से अध्यवसान होता है। क्या प्रश्न है देखो, हमें तो होने जा रहा है। अदालत में जज उसे मृत्यु दंड दे दिया है, फांसी देने वाले को बुलाकर फांसी दी गई, दोनों को क्या दोष है? मारने का हुक्म तथा मरा देना के हुक्म देने वाले का क्या होगा? कानून ऐसा, वो दोनों ही निर्दोषी है, फिर दोषी कौन? ऐसी बात नहीं है। अदालत में जज जिसको मृत्यु का दंड देता है उनको पाप बंद होता है, क्या क्या होता है उसको? पाप बंद होता है। और जो फांसी पर चढ़ाता है उसको भी पाप बंद होता है, है? कानून लौकिक कानून से क्या मतलब है? ये पारलौकिक कानून है, ये भगवान का कानून है कि जैसा परिणाम करेगा अध्यवसान करेगा, वैसा लौकिक कानून को पकड़ करके अध्यवसान करेगा जज कि उसने खून खराबा किया है इसलिए फांसी दे दो। क्यों ऐसी नौकरी करता है ये जज? कुर्सी पर बैठ करके ऐसी नौकरी क्यों करता है? अपने पेट भरने के लिए करता है। क्यों करता है? न्याय करने के लिए नहीं बैठता, पेट भरने के लिए बैठता है। तो पेट भरने का जो भी व्यवसाय है वो पाप है, है? न्याय न्याय अन्याय का अपना अधिकार नहीं है, ये कुदरत का अधिकार है, कुदरत करेगा। एक आदमी ने बम गिराया, 10,000 आदमी मर गए, और एक आदमी ने खून करके एक दूसरे आदमी को मारा, न्याय क्या करेंगे हम? न्याय करने वाले कौन? 10,000 वाले को भी फांसी मिलेगी, एक को मारने वाले भी फांसी मिलेगी। क्या हमारे पास कौन सा साधन है, कौन सी व्यवस्था है? कुदरत के पास है। 10,000 को मारने वाला नरक में जाएगा, 10,000 क्या लाख बार उनका टुकड़ा टुकड़ा हो गया नरक में, लेकिन वो व्यवस्था कुदरत में है। तेते भोग्य विशेषणा स्थानक द्रव्य स्वभाव, हमारे निर्णय का कोई अधिकार है फिर भी अध्यवसान करके बोलेंगे इसको मार दो, उसको फांसी लगा दो। जज क्या, सामान्य लोग भी कहते हैं उनको फांसी में चढ़ा देना चाहिए, हो गया अध्यवसान। क्योंकि ये हमारा अधिकार, जो करेगा वो भोगेगा, हमें क्या लेना देना। हमको पेट रोटी के लिए, पेट की रोटी के लिए भी ऐसा व्यवसाय नहीं चुनना चाहिए कि हमें बहुत नुकसान हो जाए। इसके लिए हमने हमारी आत्मा को कम से कम नुकसान होवे ऐसा कोई व्यवसाय रखना चाहिए, ये विवेक है हमारा। वरना हम रोटी के लिए कुछ भी कर लें, वो कत्ल खाना क्यों होता है? कत्ल खाना क्यों लगाया? रोटी के लिए और क्या है उसमें? तो रोटी के लिए कुछ भी करना है, इसका मतलब कि कत्ल खाना भी लगा देना। कुछ आज का जज है, कल का कत्ल खाने का मालिक हो जाएगा। अध्यवसान करने वाला अनंता कत्ल खाना लगाएगा, ये बात है। आज मारेगा, मारने का करेगा, कल बचाने का करेगा, लेकिन कत्ल खाना वो लगाएगा लगाएगा और लगाएगा। कोशिश करना करें, बचा सकता हूँ, वो अध्यवसान में आ गया। बचा सकता हूँ वो अध्यवसान में, अरे मुनि होकर के बचा सकता हूँ, द्रविलिंगी वही तो करता है, मिथ्या से अध्यवसान हो गया। अध्यवसान करने लायक
ज्ञान ही बस ज्ञान है।